نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت حامیم سجدہ شروع کریں گے. ایک کے بعد ایک خوبصورت سورت ہے. ہم قرآن پاک کی 40 سورتیں پڑھ چکے اور حامیم سجدہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے 41 یعنی 41 نمبر کی سورت ہے. پہلے تو خود کو مبارک دیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنے کلام کی 40 بڑی اہم سورتیں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اس بات کا یقین بھی رکھیے کہ یہ جتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ بھی ہونے کا ڈر ہے. اس شوق کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی تھیم استقامت فی الدین. اصل مسئلہ اللہ کو رب کہنا نہیں بلکہ اس کے دیے ہوئے دین کو قائم کرنا ہے. پچھلی دو سورتیں سورت زمر اور سورت مومن میں ہم توحید اطاعت کا مضمون دیکھتے آئے. بنیادی طور پر اس سورت کا تھیم بھی یہی ہے، لیکن اس سورت کو پڑھتے وقت مضامین میں جو رنگ غالب ہے وہ استقامت کا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے. انشاءاللہ جب آیت 30 پہ پہنچیں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کی اگلی آیتوں سے ہم انشاءاللہ اپنے لیے علاج لیں گے. بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اس سورت کے بھی دو نام ہیں، حامیم سجدہ. کیوں؟ اس لیے کہ سورت کا نام تو سجدہ ہی تھا، لیکن اس کو 21ویں پارے کی سورت سجدہ سے الگ رکھنے کے لیے حامیم سجدہ کہا گیا، کیونکہ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام فصیلت ہے، جو ہمیں اسی سورت کے اندر دکھے گا، ابھی شروع میں ہم دیکھ لیں گے. دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، صرف وہاں الف لام میم ہے، ادھر حامیم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں مکی دور کی سورتوں کی علامت کے طور پہ بھی نظر آ رہا ہے. اس پوری سورت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دعوت توحید اس کا بنیادی مقصد ہے. دعوت کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو کسی ایک ایسے شخص کا تصور رکھیے ذہن میں کہ جس نے عقیدہ توحید کو اختیار کر لیا. سوچئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. دل، دماغ، سب باطل نظریات سے پاک، ہر طرح کا شرک ختم، آپ کا سینہ نور توحید سے منور، اور اس کے بعد آپ نے خود کو اپنے رب کے آگے جھکا لیا. اب جب یہ شخص جو پوری طرح دل، دماغ، روح کی گہرائیوں تک اللہ کے آگے جھک گیا، ظاہری بات ہے کہ یہ کسی معاشرے کا حصہ ہے نا، کسی جگہ رہتا ہے. اور کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب کوئی بندہ پورے کا پورا اللہ کا بندہ بن کے جینا چاہتا ہے نا، تو دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی. یہ لکھ لے، آپ کو اپنے عمل کے لیے بہت اہم نقطہ مل گیا کہ جب میں پوری کی پوری اللہ کی بن کے رہنا چاہتی ہوں تو پھر سوسائٹی میرے ساتھ کیا کرتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کا ہر فرد ایسا ہی ہو جائے جو ابھی ذکر ہوا، تو وہاں اللہ کا دین غالب آئے گا، وہاں اسلام کی حکومت نافذ ہوگی، وہاں کے ادارے تو بعد کی بات ہے، وہاں کے انسان خود گناہ ہونے پر عدالتوں کے پاس آ کے کہیں گے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دے. یہ ہے آئیڈیل صورت. جب کسی معاشرے میں اللہ کا دین غالب ہوگا، وہاں اللہ کی حکومت ہوگی، تو ایسے شخص کی بڑی قدر کی جائے گی، بڑی ویلیو کی جائے گی. ایسے بندے کو ایسے لیا جائے گا جیسے جوہری ہیرے کو لیتا ہے. یہ اس معاشرے میں ہیرو ہوگا، آئیڈیلائز کریں گے لوگ اس کو، اسی کو پھر لوگ مختلف ٹائٹل دیں گے، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ اللہ کے کام کرتا جائے گا. اب ایسے معاشرے میں یہ بندہ اللہ کی بات مانے گا، لیکن یاد رکھیے ایک دوسری صورت بھی ہے کہ ایسا شخص کسی ایسے معاشرے میں رہنے پہ مجبور ہو کہ جہاں اللہ کا دین مغلوب ہو، جہاں اللہ کا دین ابھی دباؤ ہے. ایسے شخص کو پھر قربانیاں اور مسئلے پیش آئیں گے. اس صورت کا تھیم ہی یہ ہے کہ جب حالات سازگار نہ ہوں، جب ارد گرد کا ماحول اللہ والا نہ ہو، اور آپ اللہ والا بننا چاہتی ہیں، آپ اللہ والی ہونا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ اسی کا جواب آیت 30 جو اس پوری سورت کی تھیم آئے ہیں، آیت 30 سے 35 اور اس سے آگے کی آئے تھیم آئے ہیں. اگر آج آپ وہ سمجھ گئے نا तो बस फिर आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि ये तो मेरी कहानी है, और अनगिनत 24 पारों ने मुझे अल्लाह वाली बना दी है, अंदर से काफी हद तक बन गई हूँ, कुछ असरात बाहर दिख रहे हैं कुछ नहीं, पर करूँ क्या, मसला क्या है, लोग, खानदान, मुआशरा, फैमिली, हुकूमत, सुपर पावर्स, बड़े बड़े लोग, मीडिया वाले, फुलां वाले, फुलां वाले, और इस तरह करते करते हम हर वक्त अपने जज्बात को कुचलते रहते हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और बाद में खुद को लान तान करते हैं। शर्म नहीं आती, इतना कुरान पढ़ के फिर वक्त पे झुक गई, कभी कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोग हमारे खिलाफ शादी हालों में बैठ के बातें कर रहे होते, देखो भला ये क्या बात हुई, रंग में भंग डाल दिया, खुशी में ये कर दिया वो कर दिया। तो याद रखिए, ये कश्मकश, ये जो चौमुखी जंग होती है ना एक इंसान की जिंदगी में, उसका हल हमें सूरत में मिलेगा। जब अल्लाह का दीन गालिब होता है तो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करना आसान होता है, और पूरे तन मन धन, कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तस्वीर बन जाता है बंदा। बिल्कुल खिलाफ रास्ता का दौर ऐसे ही था, लोग हीरों की तरह लेते थे ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों से अपनी बच्चियों की शादियां करना फख्र समझते थे कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चूर होते थे, फिर वो उनके घर, गाड़ियां और उनकी उम्रें और उनकी तालीम और उनकी एजुकेशन नहीं पूछते थे। उनको ये पता था कि मुत्तकी है तो जुल्म नहीं करेगा बेटी के ऊपर। फिर लोग किसी से कारोबार करते थे तो बहुत लंबे चौड़े पेपर साइनिंग करवाते थे एग्रीमेंट्स की सूरत में। यानी आप देखिए कितना आइडियल माहौल लग रहा है सोचने में भी, आपको ना किसी से धोखे की उम्मीद है, ना किसी किस्म की चीटिंग की उम्मीद है, आप बिल्कुल जो सोचते हैं अगला वैसा है, बल्कि अगला आपको देने वाला केयरिंग है, वो कहते नहीं मैं नहीं तुम ले लो। फिर वो कैफियत आती है जो जंगे यरमूक में आई थी, कि पानी का एक प्याला कई लोगों से घूमता फिरता फिर पहले के पास आ गया कि मेरी खैर है मेरे भाई को पिला दो, मेरी खैर है मेरे भाई को पिला दो। फिर हकीकत में इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी का नक्शा अल्लाह की मर्जी और उसके दीन के मुताबिक होता है। ऐसे वक्त में देखने में बातें तो बड़ी अच्छी हैं, रोमांटिसाइज लग रही हैं, लेकिन आप देखिए कि आम लोग बड़ी आसानी और सहूलत से अल्लाह के दीन की बात मानते हैं, लेकिन अजर कब है, मतलूब क्या है, जब किसी मुआशरे या मुल्क में बातिल निज़ाम गालिब हो और अल्लाह का दीन मगलूब हो, फिर एक मवाहिद और एक मोमिन के लिए अपनी जिंदगी को किस तरह अल्लाह की इताअत और बंदगी में ढालना है, इसका तरीका हमें ये सूरत सिखाएगी। ऐसी सूरत में कोई इंसान अल्लाह की बंदगी 5, 10, 15, 20, 25% तक ही कर पाता है और फिर खुद को मुनाफिक समझते हुए रोता है। तो लिहाजा क्या करें, इसको इंशाल्लाह हम समझेंगे और इस सूरत को आप देखेंगे कि निजाम को बदलने की बातें हैं। एक सवाल उठता है कि एक तौहीद समझने वाला शख्स अगर ऐसे मुआशरे में रहने पर मजबूर है जहां बातिल है, जैसे आज का दौर है आप कह लीजिए, पूरी तरह कुफर है, तो वो क्या करे, क्या उसको जहनी तौर पर तस्लीम कर ले, क्या प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, या फिर उस निजाम को बदलने की कोशिश करे, अल्लाह के दीन को गालिब करे, क्या करे? उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जिस चीज ने उसके दिल को बदला वो उस काम करे। 10 बातों की एक बात, वो लोगों को कुरान की तालीम से जोड़ दे सुन्नत की रोशनी में। वो अकेला बेचारा कितना खपेगा, एक को चुप कराएगा तो दूसरा बोलेगा। याद रखिए रूट कॉज जहालत है, कुरान और सुन्नत से दूरी है, इसको जिद्दोजहद करने की जरूरत होगी। अपने आप को पहले बचाए, फिर घर वालों को, फिर उनकी जिंदगी की जरूरियात कम से कम करें, बिल्कुल सब्सटेंस लेवल जो होता है उस पर पहुंच कर नागुजीर हद तक अपनी जिंदगी को कम से कम कर दे, घर को कम कर दे, खाने पीने को कम कर दे, अपनी लाइबिलिटीज कम करे और अपनी पूरी सलाहियतें, अपना वक्त, अपना तन मन धन, अपने रिसोर्सेस अल्लाह के दीन को गालिब करने में लगा दे। अपने वसाइल को बातिल निजाम को जड़ से उखाड़ने के लिए फेंक दे। ये है आज के दौर का जिहाद, ये है आज के दौर का मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह मुझे सबसे पहले और आप सबको इसके बाद भी बना दे। हम सब अपनी जिंदगी का एक बड़ा मकसद, बच्चों की शादियां करना, उनको पढ़ाना लिखाना, घर छोटे से बड़ा करना ना करें, बल्कि बातिल निजाम के पढ़च्चे उड़ जाएं। तो जाहिर है उसके लिए हमारा वक्त भी चाहिए, हमारी सलाहियतें भी चाहिए, हमारे बच्चे भी रोएंगे, हमारे शौहरों के मूड भी थोड़े से खराब होंगे। तो क्या हुआ, इतनी बड़ी कॉज दे के अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा। याद रखिए जब ऐसा बातिल माहौल होता है ना तो नेकी की वैल्यू बहुत है, बल्कि अगर मैं आपको खुश कर दूं कि ऐसे हालात में तो नेकियां सेल पे होती हैं, जैसे एक नया प्रोडक्ट होता है ना तो बहुत महंगा होता है, फिर जब पुराना होने लगता है या बहुत ज्यादा हो जाए तो सेल लगाते हैं। जब दीन का काम कोई नहीं करता तो फिर सेल लग जाती है ना, तो फिर जो करेंगे उनको बहुत अजर मिलेगा, उनको ज्यादा मिलेगा अजर। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने ऊपर झांकें। हम छोटी सी बात पे पीछे हट जाते हैं, बच्चों की मजबूरी, कभी शोहर की मजबूरी, कभी बीमारियों की मजबूरी, कभी घर की मजबूरी, कभी कोई घर में आ गया, कोई चला गया, छत टपक गई, फर्श टूट गया, ये कोई बात है? शर्म नहीं आती? जब एक इंसान अल्लाह का बंदा बनता है फिर इंसान की जिंदगी को एक मकसद मिलता है, फिर उसकी जिंदगी की सुई जो है ना वो उस घड़ी पे नहीं चलती जो मुआशरे ने पकड़ी होती है, वो अपने हिसाब से चलता है। और ये काम कुछ लोग भी कर जाएंगे तो बहुत सारों का फायदा होगा। आप अपना नाम लिखिए, क्या आप इस फॉर्म पे अपना नाम लिखाना चाहती हैं? क्या आज के इस दौर में आप अल्लाह के दीन को बचाने की कोशिशों में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं? चारों तरफ गंदगी, करप्शन, बुराई, बातिल, शैतान के तरीके नाच रहे हैं, क्या आप अल्लाह के नाम का झंडा पकड़ना चाहती हैं? ये दावत है इस्लाम की। और कुरान पढ़ने के बाद सिर्फ बंदा यही बात समझ जाए तो उसने इस दावत को पा लिया। इसके लिए फिर अमली तौर पे काम करना पड़ता है, फिर जिद्दोजहद है, फिर तरतीब देनी पड़ती है जिंदगी, अपनी तरजीहात मुकर्रर करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि भाई जरा सा घर में काम हुआ तो आप कहते हैं कि अब मेरे से तो नमाज भी नहीं होगी, अल्लाह माफ करेगा, रात को पांचों पढ़ लूंगी, घर में मेहमान आ गए, सॉरी अब मस्जिद में क्या जाएं, चलो घर में ही बैठ के नमाज पढ़ लेता हूं। ये नहीं होगा। फिर इसके लिए इंसान को सबसे पहले सबसे अहम काम को करना है, और सबसे अहम काम आज से आप अपना कोडवर्ड बना लें, अपने हर दिन के नोट्स पे ऊपर लिख लें, अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश। अब मेरी बाकी जिंदगी जो है ना, जितनी भी अल्लाह को पता है, इसका मकसद ये है कि मैंने अल्लाह के दीन को नाफिज करना है। आप कहेंगे मैं कैसे करूं? ऑफ कोर्स ये कुछ एक बंदे का काम तो नहीं है ना, कोई अकेला बंदा तो ही नहीं करता। और जहां बातिल की जड़ें इतनी गहरी हों कि बड़े बड़ी ताकतों के हाथ में और शैतान जो लोगों को नचवाए, तो फिर वहां तो मुश्किल काम है। फिर इसके लिए जमात बनती है, फिर इसके लिए टीम वर्क चाहिए, फिर ताकत चाहिए। और ताकत कभी भी याद रखे, टीम बनाए बगैर नहीं मिलती, एक अकेला 2 11। और जब आपने अपनी टीम बनानी है तो उसके लिए आपको दावत इल्लाह को आम करना होगा। सूरत हामीम सजदा का यही मजमून है कि दावत इल्लाह को आम कर दो, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने का काम का बेड़ा हर उस शख्स को उठाना होगा जिसने तौहीद को एक नजरिए के तौर पे कबूल किया। सिर्फ ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान की नोक पे, नहीं, फिर हर मवाहिद को अपने नजरिए का दाई बनकर इस दुनिया के मैदान में उतरना होगा, दूसरों को कायल करना होगा, दूसरों को माइल करना होगा, किसी को दावत पे लेके जाना पड़ेगा, किसी की दावत पे जाना पड़ेगा। अंदर एक ही नीयत होगी कि हक गालिब हो जाए, इकामते दीन हो जाए, दीन की जिद्दोजहद में मैंने अपनी ताकत बनानी है। कोई रूठता है तो रूठेगा तो इसलिए कि चलो ठीक है इस वक्त दीन को फायदा है। कोई बुलाता है 10 साल का रूठा हुआ, उसको एक दफा बुला लेता है, आ जाओ जरा आज मेरे घर, वो ये नहीं कहता कि अच्छा जी 10 साल बाद मेरा ख्याल आ गया, वो कहता नहीं मैं चलता हूँ, शायद मैं जाऊं तो इसको मैं अल्लाह की कोई बात ही सिखाऊं, चल पड़ता है। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि हाय मैं बड़ा आज मजबूर हूं, मैं आज बहुत बिजी हूं, मेरी जिंदगी में बहुत काम है, हाय आज तो मैंने सफर करना है, हाय आज तो मेरे घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं, हाय आज तो मेरा बच्चा बीमार है। वो कहते नहीं, शायद आज ही वो दिन हो कि जिसमें अल्लाह मेरा नाम भी अशरा मुबशरा की तरह जन्नतियों में लिख दे, तो मैं आज की नेकी क्यों छोड़ू, पहाड़ में जाए सारी दुनिया के काम। आप सोचो जरा कितने काम है दुनिया के, आप कितने कर चुके आज तक, कहाँ मिला आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कहाँ मिला आपको सर्टिफिकेट, कहाँ मिला आपको कोई ऑस्कर अवार्ड? तो ये दुनिया कटी जाएगी, हर वक्त गुजर जाता है, मैंने देखा है हर वक्त गुजर जाता है। तो जब दुनिया बहुत बड़ी बने तो उस वक्त इस दावत को सामने रखें, फिर आपको फायदा होगा। और याद रखिए कि दावत इल्लाह का जिसको टूल आप कह सकते हैं ना, मीडियम कह लें, आला कह लें, सोर्स कह लें, वो कुरान है। पीछे हम सिर्फ फुरकान में इस पर बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, वही इस सूरत में आपको मिजाज दिखेगा। जहां आप इस्तकामत की आयतें पढ़ेंगी ना, आयत 30, उसके फौरन बाद वमन अहसन कौल मिम्मन दअ इला अल्लाह, कौन उससे ज्यादा आसान है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, फिर अमिला सालेहन काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। यानी ये कितना खूबसूरत पैकेज है, मैं कहती हूँ इस सूरत की तफसीर पानी की तरह आम करने की जरूरत है। لوگوں کو آج مسئلوں کا حل نہیں سمجھ آتا. اللہ بار بار حق کی طرف دعوت دینے والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو انذار اور تبشیر کرو, لیکن ذریعہ قرآن کو بناؤ. قرآن کے بغیر تبلیغ کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوریاں اور کہاوتیں اور حکایتیں اور وظیفے؟ نہیں, تذکیر ہے تو قرآن کے ذریعے. لوگوں کو تدبر کرنے کی دعوت دو تو قرآن میں دو. اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں. ادھر ادھر سے کوئی روحانیت کے نام پہ الٹے سیدھے وظیفے نہیں کرنے. ہر دعوت, ہر کام, ہر موڑ, ہر مرحلے پر قرآن آپ کا رہنما ہوگا. وہی مجھے ایک عربی کی پوئم کا کچھ اشعار بھی یاد آ رہے ہیں اس وقت کہ قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن ہماری حیات ہے, قرآن ہی کے اندر چلیں گے. آپ کہیں گے بار بار آپ قرآن کہہ رہی ہیں, حدیث کیوں نہیں؟ تو حدیث کے بغیر قرآن نامکمل ہے. حدیث قرآن کا حصہ ہے, اس کے بغیر تو قرآن کو ہم سمجھتے نہیں. کوئی سبق نہیں پورا ہوتا جس میں حدیث نہ آئے. اور کتنی حدیثیں کوٹ کرتی ہوں, کتنی چھوڑ بھی دیتی ہوں, ٹائم نہیں ہوتا. اور آپ کو پتا ہے کہ سورت بنی اسرائیل میں قرآن پاک کا ذکر 16 بار ہوا تھا. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہاں بھی تھوڑا سا ایسا ہی رنگ دکھے گا. سورہ فرقان میں قرآن کے ذکر کی تکرار ہے, اور یہ ساری ایک ہی دور کی صورتیں. سورت حامیم سجدہ تیسرے نمبر کی صورت ہے جس میں قرآن کا ذکر ہوگا. 6 رکوع پر مشتمل مختصر سی صورت ہے, اور 6 بار آپ کو قرآن کا حوالہ ملے گا. یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. سنتے وقت آپ نے وہ آیتیں نوٹ کرنی ہے جہاں قرآن کی بات ہے. اور یہ بھی بات آپ کو یاد رہے کہ ہم ان صورتوں میں توحید عملی اور دعوت کا تسلسل دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ سب کچھ ہمیں کچھ بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک پیکج تیار کر رہے ہیں جو ہمیں فارغ ہونے سے پہلے ہی تھما دیا جائے گا کہ تم اس کو لے کر نکلو. اور اگر تھوڑا سا پیچھے گھومیں تو سورہ زمر اور مومن گزری, توحید عملی کا مضمون کیا تھا؟ انفرادی سطح, تم اکیلے تو مومن بن جاؤ, چلو تم تو اسلام کی بات کرو. سورت زمر میں توحید فی العبادت پر زور تھا, تو سورت مومن میں توحید فی الدعا تھی. اور عبادت اور دعا کے ساتھ مخلصین لہ الدین کی شرط دونوں صورتوں میں بار بار آئی. اب یہاں سے آگے سورت حمیم سجدہ نا, اور اس کے اگلی ہی صورت آپ دیکھیں گے سورت شورا آ رہی ہے. ان دونوں میں توحید عملی کا اجتماعیت کا مضمون ہے. آپ کہہ لیں کہ پچھلی صورتیں پڑھتے پڑھتے آپ اکیلے مواحد بن گئے, تو حامیم سجدہ جو آج شروع ہو رہی ہے اور سورہ شورا جو ہم اگلے سبقوں میں پڑھیں گے, ان دونوں میں یہ ہے کہ ماحول کو مسلمان کیسے بناؤ. اور یاد رکھیے کہ اکیلے اللہ کا بننا بہت آسان ہے, لیکن لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا, معاشرے کا رنگ بدلنا, اس کے لیے پھر جد و جہد ہے, اور اس کے لیے پھر دعوت ہے. اسی لیے پھر حامیم سجدہ کا بنیادی مضمون دعوت اللہ ہے. اور آگے سورہ شورا میں ہم دیکھیں گے پورا سیٹ اپ ہے, ایک ادارہ کن بنیادوں پہ چلے, پورا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, وہ آپ کو دکھے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان صورتوں کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے خیالات بھی آئیں گے, آئیڈیاز آئیں گے. اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان آئیڈیاز کی وجہ کیا ہوتی ہے, فرشتے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں آگے, پھر چلتے ہیں آیتوں کے اوپر اور مضمون کا خلاصہ. یہ کب نازل ہوئی؟ کیونکہ اس کے بغیر تو بات ہی نہیں مزہ آتا. تو آپ اتنی باتوں سے یہ تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ مکی دور کا وہی دور ہے جب مکہ والے پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے, حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک دفعہ ایک واقعہ جو آگے آ رہا ہے انہیں آیتوں میں, 5-6 آیت میں یہیں بیان کر دوں, کیونکہ جب تک وہ ماحول نہیں سمجھیں گے باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. تو یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت نگار ہے محمد بن اسحاق, بہت معروف سیرت ہے عربی کی سیرت اسحاق. تو اس میں واقعہ موجود ہے, محمد بن قاب القرزی یہ اس کو بیان کرتے ہیں, پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے, اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں اکیلے اللہ کے نبی بیٹھے تھے. امیجن کریں ہمارا نبی کتنا اکیلا تھا, لوگوں کے پاس گروہ تھے, بڑے بڑے کئی سالوں صدیوں کی روایتیں تھیں نا. لیکن یاد رکھیے مواحد شروع میں تنہا رہ جاتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے. کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی کے چچا, دو شریک بھائی اور دوست, 3 رشتے تھے ان کے ساتھ. پیچھے آپ کو سنا چکے, اب ادھر اس کی ڈیٹیل نہیں دینا چاہتی کہ یہ کس خوبصورت طریقے سے ایمان لائے تھے. یہ تو جب بار بار آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے واقعات. بہرحال ان کا ایمان لانا قریش کو بہت کھولا تھا. قریش کے لوگ بہت پریشان تھے کہ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں. ایک دن عتبہ بن ربیعہ یہ ابو سفیان کے سسر تھے, इन्होंने कुरैश के सरदारों से मशवरा किया कि देखो भाइयों, अगर तुम चाहो तो मैं जाकर मोहम्मद से बात कर लेता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके सामने चंद ऑप्शंस रख देता हूँ, शायद इनमें से किसी को मान ले और हम भी उसे कबूल कर लें, और इस तरह वो हमारी मुखालफत से बाज आ जाए। इससे पता चलता ना कि ये थोड़ा सा अमन पसंद शख्स था। आप कह लीजिए कि अमन की कोशिशें हो रही हैं। सब ने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। खैर, उतबा वहां से उठे और अल्लाह के नबी के पास गए। आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। अब देखिए अल्लाह के नबी के एक्शंस भी हैं ना, आपने तवज्जो दी। कोई बंदा आपके पास चाहे इस्लाम सीखने आ रहा है, दावा करने आ रहा है, इवन वो आपको अपना दीन सिखाने आ रहा है, उसको तवज्जो दे। ये अल्लाह के नबी की आदत ही, पूरी तवज्जो से अगले की बात सुनते थे। खैर, उसने कहा भतीजे। भतीजा क्यों कहते थे वो लोग? उम्र से छोटे, जैसे हमारे कल्चर में बेटा कहते हैं ना कि बेटे इधर है, बेटा इधर आइए, वो लोग भतीजा कहते थे। तुम अपनी कौम में अपने नस्ब और खानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तो तुम्हें मालूम है, मगर तुम अपनी कौम पर एक बड़ी मुसीबत ले आए हो। तुमने जमात में तफरका डाल दिया, सारी कौम को बेवकूफ ठहरा दिए, कौम के दीन और उसके माबूदों की बुराई की है, और ऐसी बातें करने लगे जिसके मानी ये कि हम सब के बाप दादा काफिर थे। आज भी नहीं ये बात होते? अच्छा जी, वो सब काफिर थे? अच्छा, वो सब मुनाफिक थे? अच्छा, वो सब बिदती थे? अच्छा जी, वो जहन्नम में जाएंगे नऊज बिल्ला? इसी तरह का हर दौर में झटका लगता है कुफर को, इधर भी था। खैर, कहने लगा अब जरा मेरी बात सुनो, मैं कुछ तजवीजें तुम्हारे सामने रखता हूं, इन पर गौर करो, शायद तुम इनमें से किसी को कबूल कर लो। आप देखिए अल्लाह के नबी कितने सब्र और तहम्मुल से सुनते आ रहे हैं और कहते हैं जी अबुल वलीद, आप कहें मैं सुनूंगा। ये भी नुक्ता नोट करें, पहले अगले की तो सुने, हम तो बीच में बोल लेते हैं, अगले को और ही भड़का देते हैं। इसने कहा भतीजे, ये काम तुमने शुरू किया है, इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुमको इतना कुछ दे देते हैं कि तुम हम में से सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अल्लाह अकबर, बहुत सारे लोगों को यही खदशा होता है, इसके अंदर कोई माल की चीज जरूर है, कोई माली फायदे ही होंगे, वरना कौन दिन रात लगाता है। कहा अच्छा, माल है तो हम दे देते हैं, हमारे पास माल की क्या कमी है। चंदा देना तो लोगों को भी आसान लगता है, खुद को देना मुश्किल लगता है। हाँ, अगर इससे अपनी बड़ाई चाहते हो। दूसरा इल्जाम कि आपको जी रोब डालने का शौक है, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो हम आपको अपना सरदार भी बनाते हैं, किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करेंगे। यहां से देखिए कि अल्लाह के नबी की इज्जत कितनी थी उनके दिलों में, क्योंकि कोई ऐसे ही तो नहीं किसी को बड़ा बनाता। यहां से आप ये भी नोट करें कि जाती तौर पर अल्लाह के नबी से उनको कोई बैर नहीं था, क्योंकि आपका इखलाक और किरदार इतना खूबसूरत था। हाँ, अगर बादशाह ही चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह भी बना लेते हैं। और चौथी बात कि अगर तुम पर कोई जिन आता है जिसे तुम खुद दफा करने पे कादिर नहीं हो तो हम बेहतरीन अतिब्बा को बुलाते हैं और अपने खर्च पर तुम्हारा इलाज कराते हैं। इससे भी पता चलता है ना, उन बेचारों को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि हक वालों का मसला क्या होता है। खैर, उतबा ये बातें करता रहा और अल्लाह के नबी सुनते रहे। फिर आपने फरमाया अबुल वलीद, आपको जो कुछ कहना था कह चुके? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया अच्छा, अब मेरी सुनो। ये खूबसूरत अंदाज, पहले सुने पूरी फिर सुनाए पूरी, बीच में बोले भी ना बोले और बाद में भी ना बोलने दें। खैर, इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसी सूरत की तिलावत शुरू की। आयतें आएंगी तो आपको बताऊंगी। उत्बा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके गौर से सुनता रहा। इमेजिनेशन में आ रहा है ना, एक बुड्ढा सा शख्स है और बैग पे हाथ डाले और गौर व फिक्र कर रहा है। आयत 38 पर सजदा। जब ये आयत आई तो अल्लाह के नबी ने सजदा किया, फिर सर उठाकर फरमाया अबुल वलीद, मेरा जवाब आपने सुन लिया, अब आप जाने और आपका काम। और अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पिछली कौमों पे आए हुए अजाब की पकड़ की डर था, तो उतबा ने यह सब सुना। बोला कुछ नहीं, यहां से उठकर कुरैश के सरदारों के पास वापस गया। लोगों ने दूर से इसको देखते ही कहा खुदा की कसम उत्बा का चेहरा बदला हुआ है, ये वो सूरत नहीं है जिसे लेकर गया था। याद रखिए, जब अंदर हक आता है ना तो पता लगता है। लेकिन दोस्तों ने ताने पहले से देने शुरू कर दिए। फिर जब वो आकर बैठा तो लोगों ने कहा क्या सुना है? उसने कहा बाखुदा, मैंने ऐसा कलाम सुना कि कभी इससे पहले ना सुना था। खुदा की कसम, ना ये शेर है, ना सहर है, ना कहानत है। ये इल्जाम लगाते थे ना, और आप सोचिए उनको तो अरबी ऐसे समझ आती थी, उनके दिल में घुसती थी, तो उनके ऊपर तो असर ज्यादा होता होगा ना। अल्लाह करे हमें भी समझ आए, फिर हम देखेंगे इसका हुसन क्या। खैर, ऐ सरदाराने कुरैश, मेरी बात मानो, और इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो। मैं समझता हूं कि ये कलाम कुछ रंग लेकर आएगा। फर्ज करो अगर अरब इस पर गालिब आ गए तो अपने भाई के खिलाफ हाथ उठाने से तुम बच जाओगे। यानी कह रहा अगर गालिब आ गया तो तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं, कोई और कर देगा और दूसरे इससे निबट लेंगे। लेकिन अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाही तुम्हारी बादशाही और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। कितना अच्छा इसका मशवरा था। देखिए कुफर के पास भी बहुत समझदार लोग होते हैं, लेकिन बस जब शैतान गालिब हो या दोस्तों का साथ पूरा हो तो फिर वो इंसान को फायदा नहीं देती चीज। सरदाराने कुरैश की बात सुनते ही बोल उठे, वलीद के अब्बा आखिर इसका जादू तुम पर भी जल गया ना। ये वो बहुत कहते थे जो अल्लाह के नबी की बात सुनता है वो इनके गुनगाता है। तुतबा ने कहा मेरी जो राय थी वो मैंने बता दी, अब जो तुम्हारा जी चाहे करते रहो। ये इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 1 सफा 313 और 314 की रिवायत है। तो लिहाजा इससे पता चलता है कि ये वाक्या उस दौर का था जब अभी भी हजरत उमर मुसलमान नहीं हुए थे। इसी तरह रिवायत में यह भी आता है कि जब अल्लाह के नबी तिलावत के दौरान फैना रद फकुल अनजरतुकुम सौइकतम मिस्ल सौइकति आद व समूद, क्या अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद के अजाब जैसे एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ। जब आप इस आयत पे पहुंचे तो उतबा ने बेख्तियार आपके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा खुदा के लिए अपनी कौम पर रहम करो। बाद में इसने कुरैश के लोगों के सामने अपने इस फेल की वजह बताई कि तुम जानते हो कि मोहम्मद की जुबान से जो बात निकलती है वो होकर रहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं डर गया कि कहीं हम पर अजाब नाजिल ना हो जाए। तो यहां से अब आप देखे कि ये सूरत क्या है, किस तरह से अल्लाह ताला ये सारी बातें हमें सुना रहा है। अगर हम कुरान ना पढ़ रहे होते तो कभी भी ये डिटेल्स हम ना सुनते। हम तो सिर्फ दरसों में चंद टॉपिक सुनते हैं ना, लेकिन जब कुरान पढ़ता है इंसान तो उससे उसको फायदा होता है। तो लिहाजा आज अगर आपको भी कोई इसी किस्म की ऑप्शंस पेश करे, इसी तरह से आपकी भी दावत पे कोई शक करे, आपके किरदार को खराब करना चाहे, आपकी अकल को खराब करे, सौदेबाजियों पे आ जाए, आपकी बेइज्जती करे, आपको दीवाना मजनू कह दे, तो फिर आपने क्या करना है, वही करना है जो अल्लाह के नबी ने किया। और याद रखिए कि मुखालफत ब्रह मुखालफत इस्लाम का मजमून नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि इंसान काम करता रहे, कब अपना काम करे। सूरत में हम देखेंगे कि अल्लाह नबी को कह रहे हैं आप काम करते रहे, ये जो करे इनको करने दो, इनके एतराजात का जवाब भी ना दो। क्योंकि याद रखिए जब भी किसी जगह कोई अंधी बहरी मुखालफत करता है ना, जैसे बाज कोई राह जाता है आपसे बहर ले ले, आपकी दावत, आपके नाम, आपके इस पढ़ने पढ़ाने पर एतराज करे, तो आप जितने भी दलाइल देंगे ना वो मानेगा नहीं। ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये चीज क्या है, ये दौलत क्या है। और हम पढ़ेंगे इसी में कि ऐसे लोगों को अल्लाह कह रहे इन्होंने अपने दिलों पे खिलाफ चढ़ाए हैं। तो सुनाने की बजाय खिलाफ दूर करने की जरूरत है। आंखें बंद करके वो कभी आपके पीछे नहीं आएंगे। तो ऐसी बातों को इंशाल्लाह हम सुनेंगे और इस किताब में हमें बहुत कुछ दिखेगा, जो सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे सामने होंगी। सबक का आज का खुलासा यही है कि सबसे पहले इस कुरान की खूबी की बात है, और आप देखते हैं कि हरूफ मुकत्तात के बाद अमूमन कुरान पाक की तारीफें होती हैं, कहाँ से उतरी, किसकी किताब है, इसको इसका हक दो, ये ना हो कि तुम इसको छोड़ दो। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि जब लोग मानना नहीं चाहते तो वो बहुत सारे उजर और बहाने भी रखते हैं। और फिर हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस कायनात में खूबसूरत तरीके से निजाम पैदा किया। हर चीज उतनी ही है। शुरू की आयतें हम बहुत जल्दी में पढ़ेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछली सब सूरतों में ये बार बार आ रहा है। और आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि तौहीद अमली का मजमून है और कायनात पे गौर व फिक्र कराया जा रहा है, कैसे अल्लाह ने पहाड़ बनाए, और दुखान की बात होगी कि आसमान शुरू में कैसा होता था, फिर अजरुन गैरु ममनून क्या होता है इसको देखेंगे, फिर इसी तरह देखेंगे कि अल्लाह ने कायनात कितने दिनों में बनाई और उन दिनों की कैफियत क्या थी, फिर पिछली कौमों की पकड़ की बात है, और उसके बाद हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आयतें आपको तिलावत भी इंशाल्लाह सुनाएंगे कि जब अल्लाह किसी कौम को हिदायत पेश करे जैसे कि समूद को की, तो उन्होंने हिदायत के बावजूद गुमराह रहना पसंद किया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनका क्या इंजाम किया, और क्यामत के दिन अल्लाह के दुश्मनों का क्या हाल होगा। फिर हम देखेंगे कि क्यामत के दिन हमारे हाथ पांव, हमारी जिल्दें, खालें किस तरह से गवाही देंगी हमें हमारे खिलाफ या हमारे हक में। फिर आज के सबक में हम ये भी पढ़ेंगे कि बुरे दोस्त इंसान को कैसे हक से दूर कर देते हैं। फिर इस तरह हम पढ़ेंगे कि कुरान ना सुनो, इस मूवमेंट को मक्का वालों ने कैसे बढ़ाया और उन्होंने क्या हरबे इस्तेमाल किए और आज के दौर में कैसे हैं, और फिर हम देखेंगे कि क़यामत के दिन वो कौन लोग हैं जिनके बारे में दिल चाहेगा कि आज हम इनको अपने पाँव से ठोकरे मारें और अल्लाह तो इनको जहन्नुम में नीचे गिरा दे। और फिर आखिर में हम इस्तकामत की बातें करेंगे कि इस्तकामत में क़यामत है। असल बात अल्लाह को रब कहने से नहीं होती गड़बड़, असल बात तब होती है जब हम अल्लाह के दिए हुए दीन को कायम करना चाहते हैं। तो अब हम सूरत शुरू करेंगे। जाहिर है बहुत कुछ होता है, मुझे पता है टू मच इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर मौका शायद मिले ना मिले। तो अब शुरू की चंद आयतों की तिलावत सुन के हम इंशाल्लाह ताला आयतों के साथ चलेंगे और फिर इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जी तिलावत सुनाइए।
بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون